أو بعد تقابله 109 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے؟ یا پھر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہارف انہار بہ فی نار جہنم، یا وہ کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرا چاہتی ہے تو وہ اس کو لے کر گر گئی جہنم میں. ابھی لفظوں کی انالیسس کروں گی اس لیے گھبرائیں نہیں، صرف آپ ان آیتوں کی روح کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا وہ کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرا چاہتی ہے تو وہ اس کو لے کر گر گئی جہنم میں. یعنی جب انسان کو عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کسی مضبوط اور ٹھوس جگہ کا اہتمام کرتا ہے نا، ڈھونڈتا ہے. جیسے آپ یہاں ہیں تو آپ کہیں گے اچھا پہاڑی پہ گھر بنانا ہے تو اور طرح سے ہوگا، کھائی میں گھر ہے تو اور بنے گا. تو ہمیشہ مضبوط جگہ لیتا ہے. اگر وہ کسی کھوکھلی جگہ پر یا کسی کھائی کے کنارے پر عمارت تعمیر کرے گا تو جلد یا بدیر عمارت گر جائے گی. تو یہاں اصل میں منافقین کی تدبیریں اور دل میں کھوٹ رکھی ہوئی نیکیوں کے کام ایسے ہی ہیں. مثال کتنی زبردست ہے کہ جیسے وہ جہنم کی گہری کھائی کے کنارے پہ ہے اور اپنی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، کنارہ بھی گرے گا اور خود ان کو اس کی تعمیر کو بھی گرا دے گا. یہ جو لفظ ہے نا اس میں ہار اور جرف کہتے ہیں ایسی جگہ مٹی جہاں سے اندر پانی کھایا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ناروے میں تو ایک آدھ پہاڑی علاقہ بھی ایسا ہے نا کہ جہاں بالکل اوپر سے دور تک پہاڑی ہے، نیچے سے یوں کٹی ہوئی ہے، تصویروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. پھر کبھی سمندروں کے کنارے آپ جائیں جو بیچز ہوتے ہیں تو بعض دفعہ پہاڑ اوپر سے اتنا اوپر ہوتا ہے لیکن مسلسل لہروں کے ٹکرانے سے نیچے سے پانی چلا گیا ہوتا ہے. یہاں یہ مراد ہے. کنارے پہ کوئی چھجہ بنا دے گھر کا تو وہ تو ایسی لگے گا نا ابھی گرے سو گرے، بالکل کنارے پہ. تو پتہ کیا چلا کہ منافقوں کی سازشیں یا دل میں گناہوں کی رغبت رکھ کے غلط عزائم کے ساتھ نیکیاں بھی ایسی ہی ہیں جیسے کسی کھائی کے کنارے بنائی ہوئی عمارت. اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. ہوگا کیا اب انجام دیکھیے اگلی آیت میں. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی. لکھ لیں یہ بات، صحیح کام اور صحیح جگہ پہ کام کرنے کا ایک کرائیٹیرین لکھ دیا ادھر، اور وہ کیا؟ وہ نیکی جو تجھے خوشی دے. جب بندہ نیکی بھی کر رہا ہے اور دل میں شک اور شبہ بھی آ رہا ہے نا تو مان لیجئے کہ ادھر گڑبڑ ہے، یا آپ کی نیت خراب ہے یا جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ خراب لوگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطمینان قلب کی ایک وہ دولت دے دی ہے دین کا کام کرنے والوں کو جو ہر طرح کے حالات میں بندے کو کھڑا کر دیتی ہے کہ یہ ہے اندر سرٹیفکیٹ کہ کام ٹھیک ہے. نئی پذیرائی ہو رہی، نئے لوگ آ رہے، نئے ساتھی آ رہے، نئی کوئی راستے کھلتے جا رہے لیکن کوئی کوششیں پھیلتی بھی نہیں دکھ رہی، بٹ اندر کا سکون بتا رہا ہے کہ چلو کوئی نہ بچے میں بچ جاؤں گی. بٹ جب نیکیاں بھی کر رہے ہوں، اچھے اچھے کاموں کا بھی دعویٰ ہو لیکن ہر وقت دل میں کھندک ہے، ٹھیک کر رہی ہوں نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کے ارادے کے ان کے نظم کے. دیکھیں ایک وہ بندہ جو کام چھوڑ چکا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی، آپ ابھی ڈیسائیڈ کریں میں نے کام چھوڑنا ہے، اللہ رحم کرے آپ کو 10 سال کرتے ہوئے کام میں بھی شک نظر آئیں گے. یہ بات کب کی ہے؟ جب کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ جملہ اہم ہے، کام کرتے ہوئے دل کا اطمینان اللہ کی رضا کی علامت ہے، پر کام کر رہے ہیں اور شک ہے، کام کر رہے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں. مجھے کئی دفعہ کئی لوگوں نے کچھ باتیں پوچھی ہیں تو میں سوچتی ہوں ابھی بھی ان کو نہیں سمجھ آ رہی اپنی بات، کام تو کرتے ہیں بٹ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کسی بھی جگہ کام بھی کرتے ہیں اور ان کی برائیاں سے برائی ہے کہ بیچارے وہ انکوائر کر رہے ہوتے ہیں، دل کیوں نہیں جم رہا، پھر یہ کیوں ہے، پھر ویسے کیوں ہے، پھر یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے کام کرنے کے دوران شرح صدر، میں یہاں کے بیٹھی میں پڑھا رہی ہوں، مجھے لگے میں ٹھیک جگہ پہ پہنچ گئی ہوں، میں جو کام کروں بیٹھ کے میں کوئی اطمینان ہے، اللہ کا شکر ہے ٹھیک، میری کوشش تو ٹھیک ہے، میں ارادہ تو ٹھیک کر کے آئی ہوں، یہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ اطمینان قلب، اطمینان سچائی کی علامت ہے. لیکن میں یہاں پڑھاؤں میں کوئی نہیں، میں نے ٹھیک نہیں، بلکہ جو سن رہے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ ٹیلی کر سکتے ہیں. پڑھنے کے دوران جو آپ کے دل کو اطمینان ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ سچائی ہے. ہاں آپ چھوڑ دیں پھر تو آپ کو ہر چیز میں کیڑے نظر آئیں گے کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں، یہ وہابی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلان. कुरान पढ़ने के दौरान दिल में शक नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन मेरे पास ऐसी लंबी लिस्ट मौजूद है स्टूडेंट्स की जो कहीं जगहों पे पढ़ते हैं, कहते हैं बात सुनी थी पर उस वक्त भी दिल क्लियर नहीं हुई। फिर बात की थी, फिर टीचर से सवाल पूछा तो उन्होंने आगे गोलमोल बात कर दी, हमें मुतमईन नहीं कर सकी। वो इल्म जो आपको पढ़ने के दौरान मुतमईन ना कर दे, गड़बड़ है। और सुना के आप लोरियां मीठी दे दें, सारों ने जन्नत में जाना है, ये कर लें तो वो कर लें तो ये फिर अलग बात है। तो अल्लाह ने यहाँ एक मेयार दिया कि ये इमारत इनके दिल में शक और शुबे ही पैदा करेगी, क्या ज़रूरत इनके शक दूर होने की, इल्ला अन तक़त्ता क़ुलूबुहुम, इनके दिलों के टुकड़े टुकड़े करके अंदर से शक निकालेंगे तो निकलेगा। और अल्लाह के नबी की वो हदीस के गुनाह क्या है, मा हाक बिही फ़ी नफ्सिक, जो तेरे दिल में, जो फ़ी सदरी के या नफ्सी के शायद, कि जो तेरे दिल में खटक पैदा कर दे। आप देखें ना, आप कोई काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, छुप रहे हैं, ज़रा सा खटका इधर देख रहे हैं, तो वो कोई गड़बड़ी होती है। बच्चा भी गलत काम कर रहा होता है तो चुपके चुपके देख रहा होता है कि माँ ना आ जाए। शक कभी भी दिल से नहीं जाता जब आपके इरादे गलत हो। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला भी है, हिकमत वाला भी है। असल में यह इशारा है कि मुनाफिकों के दिल के अंदर मुनाफ़कत इतनी गहरी जा चुकी है, उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, कि अब उसके असरात का ख़त्म करना मुमकिन ही नहीं रहा। ये बिल्कुल ऐसे, आप ज़रा सा मिसाल से समझें, किसी के जिस्म में कैंसर फैल चुका है, पूरे जिस्म में जब फैल जाए तो फिर एक मामूली ऑपरेशन से ठीक नहीं होता, क्योंकि कैंसर के असरात जिस्म के रेशे रेशे में सिराइत कर चुके हैं। अब अगर सारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े किया जाए, उसकी कीमोथेरेपी हो, उधर दवाइयाँ डाली जाएं, शायद उसकी जड़ें ढूंढ ढूंढ के निकल जाएं। इसी तरह इन मुनाफिकीन के दिल हमेशा शको शुभे में, अंधेरों में डूबे रहेंगे, इनको ईमान और यकीन की रोशनी कभी नसीब नहीं होगी। हाँ, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए, यहाँ पे यह मज़मून पूरा हुआ है। क्या खुलासा निकला, कि वो नेकियां जो गलत नीयतों और गलत इरादों के साथ की जाएं वो ठीक नहीं होती। देखिए, इतने मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं ना काम के, इतने मुख्तलिफ एंगल कह लीजिए या जाविये हैं किसी भी काम को देखने के, जब तक अल्लाह से बंदे का गहरा ताल्लुक ना हो, आप सही और गलत का, अच्छे और कम अच्छे या अच्छे और बुरे का फ़र्क ही नहीं नोट कर सकते। मेरे आपके लिए अमल की बात, पहली बात देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, आप खुद मदीना में मौजूद, मस्जिद नबी मौजूद, कुबा मस्जिद मौजूद, अस्साबिकून अलव्वलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार मौजूद, वहाँ भी एक ऐसा गिरोह था। नसीब की बातें होती हैं, तो मत समझे कि मैं और आप नबी के दौर में होते तो हम पता नहीं अबू बकर सिद्दीक ही बन जाते। अगर आज नहीं बने ना तो वह तब भी नहीं था बनना, इल्ला माशाल्लाह जो अल्लाह चाहे। अच्छी सोहबत फ़ायदा देती है अच्छे दिल वालों को, दिल खोटा हो तो नबी का साथ भी बंदे को ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकता। पीछे अबू लुबाबा की कहानी पढ़ी, कैसे दिल को बांध लिया और ख़ुद को सुतून से बांध दिया, ऐसे भी लोग थे। कहाँ मुरजौन पीछे पड़ा है, काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी, कल फिर उनका जिक्र आ रहा है, और कहाँ बीच में ये लोग। यहाँ से ये भी नोट कीजिए कि बंदे के नसीब की बात है कि वो खैर की जगह से भी खैर लेकर उठता है कि शर लेकर उठता है। फिर अगली बात, इससे क्या पता चलती है कि अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे। अल्लाह ताला अगर ये आयतें ना नाजिल करते तो हो सकता है आपको पता भी ना चलता। और ये भी नोट कर लीजिए कि मुनाफिकीन के सबसे ज़्यादा शरीर गिरोह की साजिश का ये जिक्र है। शरीर कहते हैं जो मुसलसल शर फैलाए, फाइल का वजन है। बज़ाहर मुकद्दस शक्लो सूरत, बज़ाहर बड़े नेक इरादे, लेकिन अंदर शर भरा हुआ था। अल्लाह ने इस गिरोह की कलई खोल दी। और इसमें एक और चीज़ भी पता चलती है, थोड़ा सा अबू आमिर के किरदार पे भी बात कर लीजिए। वो कहता था खुद को, या लोग कहते थे, अबू आमिर राहिब। आज इस्लामिक हिस्ट्री उसको क्या कहती है, अबू आमिर फासिक। आप में से किसी को पता ये किसका बाप था? मैं तो अल्लाह के फैसलों पे हैरान होती हूँ। उधर बाप अबू जाहल है तो बेटा इकरमा है। जी बताइए, ये किसका बाप है? हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हो का बाप था, कि जिनको गसीलुल मलाइका कहा गया, जिनका गुस्सल फरिश्तों ने दिया और जिनकी डेड बॉडी उठाई वो पानी के कतरे थे, जिन्होंने अल्लाह के रस्ते की कॉल सुन के गुस्ल करना भी फर्ज जरूरी नहीं समझा और वो गए और जाके लड़े। बेटा देखिए और बाप देखिए कैसा था। और दूसरी बात है कि यहाँ दरवेशी के तोहफे हैं, वो इल्म जो सिर्फ आपको ऐसे मामले पे ले दे ना, मैं लफ्ज़ सिर्फ इसलिए नहीं बोलती कि कोई गलत ना समझे, लेकिन वो इल्म जिसको आप सिर्फ तसव्वुफ की निगाह से देखते हैं ना, इल्म की रूह छोड़ देते हैं, उसके आखिरी इंजाम यही निकलते हैं। जब तक आपके अंदर इल्म ना आएगा बात नहीं बनेगी। बस दफ़ा इल्म और दरवेशी, हक शनासी और हक जुही के रास्ते में एक हिजाब बन जाती है। और दुख देखिए कि नबी के मदीना में आने के बावजूद नेमत ईमान से महरूम रहा, बल्कि नबी सल्लम को अपना मुखालिफ क्यों सोचता था, कहता था कि मेरा जो पीछे से दौर चल रहा है या मेरी जो शान इज्जत है वो अल्लाह के नबी की वजह से ख़त्म हो जाएगी और मुझे इज्जत चाहिए। यानी इसमें फिर नफ्स है, अल्लाह ताला बचा के रखे। फिर इसके बाद आप देखिए कि ये शख्स जो है इसने नबी सल्लम को उहद में गिराने का अहतमाम भी किया था। मैदान उहद था तो घड़े खुदवाए, ऐसी डिचिस नहीं होती जैसे डिच, उसमें अल्लाह के नबी गिरे और ज़ख्मी हो गए और वो वाकया तो अपने उसमें पड़ा, लेकिन ये नहीं पता था उस वक़्त कि वो भी घड़े इसी शख्स ने खुदवाए थे और अल्लाह के नबी गिरे और फिर ज़ख्मी हुए थे। फिर इसी तरह जंगे अहज़ाब, तो चारों तरफ से दुश्मन जो जमा हुए थे, सूरत अहज़ाब में ही पढ़ेंगे, उन सारे ग्रोहों को जमा करने में इस शख्स का किरदार था और इसने करा। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसमें एक और चीज़ भी आपके मेरे नोट करने की, और वो क्या है कि जो अभी रोम की तरफ तबुक का सफ़र था ना, उसमें भी इसकी साजिशें थी। ये भी एक प्लानिंग होगी। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है आज से 10-15 साल पहले का, कि कहा अच्छा फलाउगा ने खुद ही ये बिल्डिंग गिराई है और उस दिन ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। लोग बाद में हकायक को जमा करते हैं ना, हो सकता है कि ये साजिश इस तरह हुई कि अल्लाह के नबी तबूक जाएंगे तो हम पीछे से इफ्तिताह कर लेंगे, घर खाली होगा, लोगों को बुलाएंगे, आजकल तो इधर है ही नहीं अल्लाह के नबी, आओ हम खुतबा रखते हैं, हम दर्स रखते हैं, ये पूरी साजिश। इसी को साजिश कहते हैं, प्लान करके पीछे से इधर उधर से लेकर आते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज़ इससे पता चलती है कि खाम खा बिला ज़रूरत दीनी इमारतें या मस्जिदें नहीं बनानी चाहिए। अब इस क्राइटेरियन पर ज़रा सा नज़र डाल के जिस जिस शहर मुल्क को आप जानते हैं उधर उधर नज़र दौड़ा लीजिए। सिर्फ जुम्मे के जुम्मे मस्जिदें भरती हैं और पूरा हफ्ता खाली है, लेकिन हर एक मस्जिद दूसरी से वॉकिंग पे है। 10-12 मस्जिदें तो सिर्फ आपके भी ग्रीनलैंड में वॉकिंग पे है ना, जिसको आप और मैं जानते हैं, और इससे ज़्यादा भी हैं। मुँह इधर करें तो इधर मस्जिद, इधर करें तो इधर, वजह क्या है? हमारी मस्जिद, मेरी मस्जिद, हमारी सोच। तो ये चीज़ें भी नहीं, और कई जगह ऐसी भी हैं कि 10-10 मील तक मस्जिद कोई नहीं है। तो मस्जिदें बननी चाहिए, लेकिन एक सोच और एक प्लेटफॉर्म के साथ। और आपको पता है कि आज के दौर में भी जो दीन के अंदर तजाद है वो कहाँ से निकलता है? दुख की बात है, वैसे अच्छी बात नहीं है जो मैं बताने लगी हूँ। आप देखिए कि मस्जिद तो मस्जिद को सपोर्ट करे ना, कि चलें जी हमारी मस्जिद छोटी पड़ी थी, ये एक और मस्जिद खुल गई, आप कुछ लोग उधर भी जाएं, इनको सपोर्ट करें। हाल ये हो गया कि मस्जिद के करीब दूसरी जगह दीन की बनाने के लिए किसी से मशवरा हो रहा था, तो उन्होंने कहा पहले हम आपको कहते थे कि इस मस्जिद के करीब अपना स्कूल खोल लें, हमारे अपने स्कूल को किसी ने मशवरा दिया, अब हम आपको ज़रा सा वॉर्न करते हैं, ज़रा कोई अलग जगह पे जगह मिल जाए तो वो ले लें, बेहतर है। क्यों? कि मस्जिद वालों से मुखालफत का अंदेशा है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। वो मिंबर जहाँ से लोगों को बुलाना है कि आओ बेटियों बहनों के लिए कुरान का इंतज़ाम है, तालीम का हो गया, आ जाए, अब वहाँ से शकूक व शुबहात होंगे, तो बेहतर है कि आप अलग से कहीं खड़े हो जाएं, वहाँ कम अज़ कम लोग इधर उधर से बातें तो नहीं सुनेंगे। ये सच्ची बातें हैं, कोई मुबालगा भी नहीं कर रही। याद रखिए कि ये हालात हैं जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा के ऊपर इस वक्त ये जो वबाल है कि हम बग़ैर इल्म के इमाम बने फिरते हैं। अल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा और आपको मेरे से ज़्यादा हिदायत दे। फिर उसके बाद अगला जुमला लिखिए, नुमाइशी ने किया। दीन के बहुत सारे काम नुमाइशी होते हैं, जिसमें प्रोटोकॉल है, शो ऑफ है, दिखाओ कैसे किधर, तो कई दफ़ा फिर वो मस्जिद दरार की कैफियत बन जाती है। फिर इसके बाद एक और चीज़ भी बड़ी अहम है, अल्लाह के नबी से वहाँ नमाज़ पढ़वाना, ना पढ़ाते तो क्या होता? उस मस्जिद को वो शोहरत ना मिलती। तो अल्लाह के नबी से बेनिफिट लेना चाह रहे थे, और कहते हैं कि उन्होंने ये सोच रखा था कि अल्लाह के नबी ने तो वापस तबुक से नहीं आना, तो जूँ ही हमें आपकी वहाँ हलाकत की खबर मिलेगी तो हम अब्दुल्ला बिन उबई के सर पर ताजे शाही रख देंगे। लेकिन तबूक के सफ़र में तो उम्मीदों पे पानी फिर ही गया। अल्लाह के नबी जब मदीना के करीब, ये जगह का नाम लिख ले जहाँ यह आयतें नाजिल हुई थी, ज़ी अदान, ज़ी वाला अलिफ दाल अलिफ नून का मुकाम था, मदीना से भी थोड़ा दूर ही था, वहाँ पे यह आयतें नाजिल हुई। आपने चंद आदमियों को भेजा ताकि शहर में दाखिल होने से पहले मस्जिद को जला दिया जाए। ये भी अब बात है, इस मैंने थीम में बता दी थी। मस्जिद बनाने वाले फासिक के नाम से मशहूर हुए, अब मस्जिद गिराई गई बल्कि जलाई गई। तफसीर मजरी की एक रिवायत पढ़ के सुना देती हूँ। कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मनवरा पहुँच गए तो मस्जिद दरार की जगह खाली पड़ी थी। आपने आसिम बिन अदी को इजाज़त दी कि वो इस जगह अपना घर बना ले। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, जिस जगह के मुतल्लिक कुरान में ये आयतें नाजिल हो गई तो इस मनहूस जगह में घर बनाना पसंद नहीं करता। अलबत्ता साबित बिन अकरम के पास कोई घर नहीं, इनको इजाज़त दे दी जाए कि वो वहाँ जाकर मकान बना लें। इनके मशवरे के मुताबिक आपने ये जगह साबित बिन अकरम को दी, मगर ये हुआ कि जब से वो इस मकान में मुकीम हुए इनका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, पैदा हुआ तो मर गया। मौरखीन कहते हैं कि ये जगह ऐसी मनहूस साबित हुई कि कोई इंसान तो इस जगह क्या पलता फूलता, कोई मुर्गी भी इस जगह अंडे बच्चे देने के काबिल ना रही, कोई कबूतर और जानवर भी यहाँ बावर ना हो सका। ये तफसीर मजरी का नाम मैंने लिख दिया कि यहाँ फिर बाद में कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक अहले जैसे आज बहरे मुर्दार है, कौम लूत का कब्रिस्तान, तो अल्लाह ताला इन जगहों को फिर इस तरह से ज़ाया करता है। फिर देखिए शुरू में बात हुई ना मस्जिद दरार, दरर क्यों नहीं आया? दरर और चीज़ है, दरार और है। जो लफ्ज़ दरार है ना, नुकसान पहुंचाने के मानी होते हैं। ज़रर वो होता है जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचे, लेकिन ज़रर पहुंचाने वाले का इसमें अपना फ़ायदा हो। लेकिन दरार में दोनों को नुकसान होता है, पहुंचाने वाले को भी नहीं होता और मस्जिद का इंजाम भी बुरा हुआ, दोनों जगह देखिए। फिर इसी तरह से ये जो थोड़े से मुश्किल लफ्ज़ है इसको भी देख लीजिएगा कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इनकी यहाँ बात की है कि ये इनकी इरसाद और घात था। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि पत्थरों और ईंटों की बिल्डिंगें तो बन जाती हैं, लेकिन वो अल्लाह के घर कब बनते हैं? जब वहाँ अच्छे अकीदे के साथ नेक दिल लोग अल्लाह के लिए काम करते हैं। फिर इसके बाद याद रखिए कि ये मस्जिद कुबा की रौनक को कम करना चाहते थे। इरादा ये था कुछ लोग इधर आएँ कुछ इधर आएँ, फिर उनको बदगुमान किया जाएगा, फिर वो वापस जाएंगे, फिर अपने लोगों के कानों में कोई बातें करेंगे। और अफसोस की बात है कि आजकल हर एक मस्जिद दूसरी के लिए मस्जिद दरार ही बनी हुई है, इल्ला माशाल्लाह, इल्ला माशाल्लाह के कोई दूसरी जगह जाते हुए भी देख कर लोगों को खुश हों। फिर उसके बाद ये जो कुबा वालों की तारीफ़ की गई है, तो इसके बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी रिवायतें लिख लें कि कोई लहसुन और प्याज खाकर हमारी मस्जिद में ना आए। तो फिर सिगरेट की बू से भी तो मस्जिद ख़राब होती है ना। मस्जिदों में से खुशबू आनी चाहिए, साफ़ सुथरी हो, बरकत वाली हो, पूरी सफाई का ख्याल किया जाए, रंग बिरंगा फर्नीचर ना रखा जाए, कारपेट पे दाग धब्बे ना हो, बिरयानी और कौरमे की खुशबुएं मस्जिद में ना आए। ऐसी मस्जिदों से फिर रूहानियाँ चली जाती, वहाँ जाके वो लगता क्या कि होटल में आए हैं। खानों की खुशबुएं, मसालों की तेज़ी, ये सारी चीज़ें इबादत का खुशबू ख़त्म कर देती हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बावजू रहना, अपने आप को पाक रखना, ये भी इसी में आ जाता है। फिर ये जो लफ्ज़ शफा है ना, शफा ये क्या है? अगर आप देखें कुरान की एक आयत याद है, अलम नजल लहू ऐनैन लिसानम बस शफातैन। शफातैन क्या है? तो होंठ को शफातैन क्यों कहते हैं? शफा किनारा, एजिस, किसी चीज़ का किनारा। और जुर्फ कहते हैं नदी नालों और वादियों में पानी के बहाव की वजह से जो कट पड़ जाते हैं, हार का मानी गिरने वाला, फ़र्क दोनों का बताया। तो आज सुबह मैंने एक पिक्चर कुछ ग्रुप्स में शेयर की, खाना काबा के तवाफ़ की पिक्चर देखी, आज ये पढ़ते हुए मुझे वो याद आ रही थी। तो बारिश है, रंग बिरंगी छतरियाँ, तवाफ नहीं रुक रहा। इतनी दुआ की मैंने अपने सारे, मेरे हाल जितने मुझे मुल्कों के और जो जो मेरे ग्रुप सामने थे मैंने सारे ग्रुप्स में भेजी है, मैंने अपनी टीचर को भी भेजी। क्यों भेजी? कि अल्लाह हमसे वो काम ले ले कि लोग बारिशों में भी दीन की तरफ भागते हुए आए। हम तो छोटी सी चीज़ पे मुश्किल का नाम लेकर पीछे हो जाते हैं। हमारी दुनिया की छोटी छोटी चीज़ें इतने बड़े बड़े ऑब्स्टिकल बन जाती हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें नेकियों के काम नेकियों ही के तरीके से और नेकियों के नाम पे करने वाला बना दे। कोई बात इसमें आपके जहनों में आ रही है तो शेयर कर सकते हैं जी आप। जी नहीं पढ़ाई थी, कहा था कि आके पढ़ूंगा, लेकिन जब ये आयतें नाजिल हो गई तो आपने जाकर उस पर हुक्म दिया और फिर वो जो मस्जिद थी वो गिरा दी गई थी जी। उसके बाद गिराई गई, यानी अल्लाह के नबी ने फिर वहाँ नमाज नहीं पढ़ी। ये आज के दौर में देखिए कई इश्यूज आपको अखबारों में भी आते होंगे, गैर मुस्लिमों का किसी मस्जिद को गिराना हमें कितना बुरा लगता है, और उसके मुकाबले में मंदिर का बनना और सारी दुनिया में मैसेज आम कर दो और ये होने लगा और वो होने लगा। ये बताइए उस मस्जिद में नमाज कितनी दफ़ा पढ़ने गए, और जो इतनी मस्जिदें फजर के वक्त रो रही होती हैं उस वक्त आप लोग क्या करते हैं। तो याद रखिए इसी सूरत में हम पढ़ चुके हैं इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को वो लोग आबाद करते हैं जो कि अकीदे के ठीक होते हैं और जिनके अमल अच्छे होते हैं। तो अगर हम मुसलमान अपनी मस्जिदों में 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ने जाते तो वो भी उसकी ख़राबी और उसकी वीरानी ही के ज़मन में आता है। तो अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तरीके से क़यामत तक रहने वाली नेकियां करने वाला बना दे, हर नेकी को बाक़ियातुस्सालिहात में ढाल दे।
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم